معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے. معزز نابینا خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عمران سیریز کا ناول گرین گارڈ. اس کے مصنف مظہر کلیم ہیں اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف. گہرے براؤن رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے اونچے مگر ویران پہاڑوں کے درمیان بنی ہوئی سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی. اس سڑک پر اکیلی یہی کار تھی، اس کے علاوہ نہ کوئی اور کار نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی بس وغیرہ. پہاڑ بھی بھورے رنگ کے تھے اور اس قدر ویران تھے کہ ان پر کہیں گھاس کی ایک پتی تک نظر نہیں آ رہی تھی. کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس کا چہرہ اس کی جسامت کی طرح چوڑا تھا، سر پر بالوں کا ایک بڑا سا گچھا نظر آ رہا تھا. اس نے سرخ رنگ کے فریم اور سرخ رنگ کے شیشوں والی گوگل پہنی ہوئی تھی، جبکہ سائیڈ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے سر پر مخصوص انداز میں سیاہ رنگ کا رومال باندھا تھا، ویسے وہ ایک اسکرٹ میں تھی. دونوں یورپی نژاد تھے. لڑکی کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا جس میں جانوروں کی عجیب سی تصاویر تھیں، اور وہ لڑکی ان تصویروں کو اس طرح غور سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ انہیں اپنے ذہن میں نقش کر لینا چاہتی ہو. کار کی رفتار خاصی تیز تھی. اور تیز چلو رینڈل، تم بڑے سست رفتار سے کار چلاتے ہو. مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کار چلنے کے بجائے سڑک پر کوئی کچھوا رینگ رہا ہو، لڑکی نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا. ذرا رسالے سے نظریں ہٹا کر بھی تو دیکھو، 200 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہے کار، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا جسے رینڈل کے نام سے پکارا گیا تھا. صرف 200 کلومیٹر؟ اس رفتار پر تو بچے بھی کار چلا لیتے ہیں. جب میں تمہارے ساتھ موجود ہوں تو کم از کم 400 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھا کرو، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو رینڈل بے اختیار ہنس پڑا. تاکہ ہم سیدھے قبرستان پہنچ جائیں، رینڈل نے ہنستے ہوئے کہا. تم فکر مت کرو، تم جیسا ڈھیٹ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا، لڑکی نے کہا. اور اسی لمحے کار کے اندر ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں یہ آواز سن کر بے اختیار چونک پڑے. لڑکی نے رسالہ بند کر کے اسے ڈیش بورڈ میں رکھا اور اسی طرح الرٹ ہو کر بیٹھ گئی جیسے کسی نادیدہ خطرے کا سامنا کرنے پر مجبور ہو، جبکہ رینڈل کے جسم میں تناؤ خاصا محسوس ہو رہا تھا. سیٹی کی آواز اس وقت سنائی دی تھی جب رینڈل نے کار کو دائیں ہاتھ پر جانے والی چھوٹی سڑک پر موڑا تھا. یہ سڑک سیدھی پہاڑی سلسلے پر جا کر ختم ہوتی تھی. جہاں یہ سڑک ختم ہوتی تھی وہیں سڑک کے دونوں اطراف میں معدنیات نکالنے اور انہیں صاف کر کے پیس کر باریک کرنے کی باقاعدہ فیکٹریاں لگی ہوئی تھی. رینڈل نے کار ایک فیکٹری کے سامنے روک دی تو پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوا ایک مسلح دربان تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا. رینڈل اور دکشا، 333 111، رینڈل نے دربان سے بات کرتے ہوئے کہا. اسپیشل کوسٹ، دربان نے جھٹکے دار لہجے میں کہا. لو کوسٹ، رینڈل نے جواب دیا. تو دربان تیزی سے مڑا اور چھوٹے فاٹک سے فیکٹری کے اندر چلا گیا. چند لمحوں بعد وہ واپس آیا اور اس نے رینڈل کے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا دیا. عقبی طرف، دربان نے کہا اور پھر مڑ کر فاٹک کی طرف بڑھ گیا. رینڈل نے کار آگے بڑھا دی فیکٹری کے اختتام پر اور پہاڑ کے درمیان ایک تنگ سا راستہ فیکٹری کی سائٹ سے ہوتا ہوا آگے جا رہا تھا. رینڈل نے کار اس راستے پر موڑ دی. فیکٹری کی عمارت ختم ہوتے ہی کار ایک بار پھر مڑی اور پھر ایک شیڈ کے نیچے جا کر رینڈل نے کار روک دی اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں تیزی سے کار سے اتر گئے اور ایک طرف نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں پر اترتے چلے گئے. کافی نیچے جا کر سیڑھیوں کا اختتام ایک سرخ رنگ کی دیوار پر ہوا. رینڈل نے دیوار پر ایک جگہ اپنا ہاتھ رکھ کر اس جگہ کو دبایا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی جس جگہ کو دبایا تھا وہاں باریک سا سوراخ بن گیا اور رینڈل نے دربان کا دیا ہوا کارڈ اس سوراخ میں ڈال دیا. چند لمحوں بعد سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی. اب سامنے ایک اور بند راہداری تھی. وہ دونوں اس راہداری میں داخل تو ہوئے، اس کے بعد ایک بار پھر عقب میں سرر کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی دیوار برابر ہو گئی. राहदारी के अख्ताम पर एक दरवाजा था। दरवाजे की साइड पर साइड दीवार पर हुक में एक फोन लटका हुआ था और दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। रैंडल ने हुक से फोन पीस निकाला और उस पर मौजूद सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। कोड, फोन पर एक भारी सी आवाज सुनाई दी। लो कॉस्ट, रैंडल ने जवाब दिया। नाम क्या है, दूसरी तरफ से कहा गया। रैंडल और दक्षा, रैंडल ने जवाब देते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया। तो रैंडल ने सुर्ख बटन एक बार फिर प्रेस करके फोन पीस वापस हुक में लटका दिया। उसी लम्हे दरवाजे के ऊपर जलता हुआ सुर्ख रंग का बल्ब बुझ गया और दरवाजा बगैर किसी दरवाजे के खुद ब खुद खुलता चला गया। रैंडल और दक्षा दोनों अंदर दाखिल हुए तो ये खासा बड़ा ऑफिस था। महागनी की बड़ी सी मेज के पीछे एक भारी जिस्म और चौड़े चकले चेहरे का मालिक ऊंचे कद का आदमी सूट पहने बैठा था। उसकी तेज नजरें इन दोनों पर जमी हुई थी। बैठो, इस आदमी ने भारी आवाज में कहा तो दोनों मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सियों पर मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गए। ऑफिस का दरवाजा इनके अकब में खुद ब खुद बंद हो गया था। तुमने कभी एशिया में काम किया है, चीफ ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस सर, जब हम दोनों एक रीमियन टॉप एजेंसी में थे तो मैंने एशिया में 2 साल तक काम किया है, रैंडल ने जवाब देते हुए कहा। गुड, मैं तुम्हारे जिम्मे एक अहम मिशन लगाना चाहता हूँ। पाकेशिया का एक साइंसदान जिसका नाम डॉक्टर कमाल हुसैन था, वो 10 साल तक एक क्रीमिया के एक लेबोरेटरी में काम करता रहा। वहां उसने आखिरी 5 सालों में एक इंतहाई अहम फार्मूले पर काम किया है और इसके लिए इसने बाकायदा एक क्रीमियन हुकाम से इजाजत ली थी। इस फार्मूले का नाम क्रॉस ब्रेड था। ये क्रॉस ब्रेडिंग इंसानों या जानवरों की नहीं बल्कि मारूफ अजनास की क्रॉस ब्रेडिंग थी। इस सिलसिले में कामयाबी का मतलब था कि चावल के ऐसे पौधे उगाना जो लेबोरेटरी के अंदर ही चावलों से भरे ट्रक पैदा कर दे। चावल, गंदुम, आलू और तेलदार बीज, इन सब की क्रॉस ब्रेडिंग मतलूब थी। वैसे तो इस आइडिया पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है क्योंकि कुर्रा अर्थ पर आबादी इतनी तेजी से फैलती जा रही है और उसी तेजी से जरई रकबा भी सुखड़ता जा रहा है और मौसमी हालात की वजह से पैदावार भी कम होती जा रही है। चुनाचा साइंसदानों के मुताबिक जल्द ही वो वक्त आएगा जब एक दिन जरई जमीन भी नहीं रहेगी। आबादी इस कदर बढ़ चुकी होगी कि इन सब के खुराक से पेट भरने नामुमकिन हो जाएंगे और वही मुल्क कायम रह सकेंगे जो वाफिर मकदार में अजनास पैदा कर सकेंगे। इसलिए सुपर पावर्स है क्रीमिया, रूसिया, कार्मन, ग्रेटलैंड और दूसरे ममालिक के साइंसदान मुस्तकबिल के इस खौफनाक मसले से निपटने के लिए दिन रात कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी तरह कम पौधों से ज्यादा पैदावार मुमकिन बनाई जा सके। गो इस सिलसिले में कई ममालिक को खासी चौंका देने वाली कामयाबियां हासिल हुई हैं, लेकिन डॉक्टर कमाल हुसैन का फार्मूला क्रॉस ब्रेडिंग इसलिए नुमाया था कि अगर वो कामयाब हो जाता तो सिर्फ छोटी सी लेबोरेटरी में मखसूस माहौल पैदा करके थोड़े से पौधे उगाए जाते और इन पौधों से इस कदर अजनास हासिल होती कि पूरी दुनिया की जरूरियात को कई सालों तक पूरा किया जा सकता था। इसलिए इस फार्मूले को पूरी दुनिया अहमियत दे रही थी। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर कमाल हुसैन का जहनी तवाजुन खराब हो गया। डॉक्टरों ने उसे अच्छी तरह चेक किया और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि डॉक्टर कमाल हुसैन के जहन को इस कदर शौक लगा है कि उसके जहनी फलियात मुस्तकिल तौर पर खलत मलत हो गए हैं। वो बातचीत करता था, उठता बैठता और खाता पीता था, लेकिन सोच का कोई मादा उसके जहन में पैदा ही ना होता था। इसकी वजह ये बयान की गई कि डॉक्टर कमाल हुसैन को अपनी इकलौती बेटी से बेहद प्यार था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। उसकी माँ उसकी पैदाइश के वक्त हलाक हो गई थी और डॉक्टर कमाल हुसैन ने उसे माँ बनकर पाला था। फिर इसकी बेटी अचानक एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गई। इस खबर ने डॉक्टर कमाल हुसैन के जहन को ऐसा शॉक पहुंचाया कि उसकी जहनी खलियात खलत मलत होकर रह गए। डॉक्टर कमाल हुसैन तवील अरसे तक क्रीमिया के आला तरीन डॉक्टरों के जेर इलाज रहे, लेकिन बड़े डॉक्टरों ने इसकी जहनी सेहत की तरफ से कतई मायूसी का इजहार कर दिया तो डॉक्टर कमाल हुसैन को वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया और इसके फार्मूले पर दूसरे साइंसदानों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब हिम्मत हार गए, क्योंकि डॉक्टर कमाल हुसैन की जहानत तक उनमें से कोई भी नहीं पहुंच सका। इस तरह 10 साल गुजर गए। अब अचानक हैरानकुन वाकया सामने आए हैं। क्रॉस ब्रेड फार्मूला, जिसे अमेरिका के एक्रीमिया के दीगर फार्मूलों के स्टोर में पहुंचा दिया गया था, गायब कर दिया गया। और ये भी इत्तला मिली है कि पाकिस्तान से डॉक्टर कमाल हुसैन को भी गायब कर दिया गया है, चीफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा, और फिर इस तरह रुक गया जैसे सांस लेना चाहता हो। रैंडल और डक्षा दोनों इस अंदाज में बैठे सुन रहे थे जैसे बच्चे कोई दिलचस्प और हैरान कुन कहानी सुन रहे हो। लेकिन चीफ के खामोश होने के बाद भी वो दोनों खामोश ही रहे। एक्रीमिया की एजेंसियों ने इस सिलसिले में जो मालूमात हासिल की हैं, उनसे सिर्फ इतना पता चला है कि कोई बैनुल अक्वामी तंजीम है जिसका नाम ग्रीन गार्ड है। ये तंजीम पूरी दुनिया के अजनास पर कब्जे के लिए इस दुनिया पर हुकूमत करना चाहती है, और इसके पास डॉक्टरों की ऐसी टीम है तो डॉक्टर कमाल हुसैन का जहनी तवाजुन ठीक कर सकती है, और जब डॉक्टर कमाल हुसैन का जहनी तवाजुन दुरुस्त हो जाएगा तो डॉक्टर कमाल हुसैन से क्रॉस ब्रेड का फॉर्मूला मुकम्मल करा के अजनास पर कंट्रोल करना शुरू कर देगी। अभी तक चूंकि तमाम ममालिक में जरिए अजनास पैदा हो रही हैं, लेकिन इस पर लागत बहुत आ रही है और हर साल बैनुल अक्वामी मुआशी बहरान की वजह से लागत में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से अजनास हर साल महंगी से महंगी और आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। फिलहाल तो हुकूमतें खुद ज्यादा कीमत अदा करके कम कीमत पर अजनास आवाम को मुहैया कर रही हैं, लेकिन ऐसा कब तक हो सकता है। बहरहाल ग्रीन गार्ड का मंसूबा ये है कि अभी वो पूरी दुनिया में अजनास इंतहाई सस्ती कीमत पर फरोख्त करेगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में अजनास की पैदावार खत्म हो जाएगी और फिर पूरी दुनिया ग्रीन गार्ड के कब्जे में होगी। तमाम एटम बम, हाइड्रोजन बम, हर किस्म के मिसाइल और जंगी असलहा सब बेकार और लोहे का ढेर बन जाएंगे। अजनास ना मिलने की वजह से भूखे लोग अपनी हुकूमतों पर चढ़ दौड़ेंगे, और अजनास चूंकि सिर्फ ग्रीन गार्ड के पास होगी इसलिए पूरी दुनिया के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए ग्रीन गार्ड के ताबे हो जाएंगे, और ऐसा मुस्तकिल तौर पर होगा। इस तरह ग्रीन गार्ड सिर्फ कमाल हुसैन का फॉर्मूला कामयाब कराकर पूरी दुनिया की तन्हा हाकिम बन जाएगी, और जिस मुल्क या कौम को चाहेगी अजनास ना दे और उनको मजबूर कर दे कि वो भूखों मरे, और जिसे चाहे वाफिर अजनास देकर खुशहाल कर दे, चीफ ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा, और फिर वो खामोश हो गया। इस बार भी रैंडल और डक्षा दोनों पहले ही की तरह खामोश बैठे रहे, क्योंकि वो चीफ की आदत जानते थे। चीफ को ज्यादा सवालात पसंद नहीं थे और वो जब तक अपनी बात खत्म ना कर लेता था उस वक्त तक किसी की मदाखलत उसे किसी सूरत पसंद नहीं थी, और चूंकि वो समझते थे कि अभी चीफ की बात मुकम्मल नहीं हुई इसलिए वो चीफ के खामोश हो जाने के बावजूद खामोश बैठे रहे थे। इस ग्रीन गार्ड के बारे में तमाम सुपर पावर्स की एजेंसियां काम करती रही हैं, लेकिन किसी को आज तक इस बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि इस तंजीम का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके कर्ता धर्ता कौन है। सिर्फ इसका नाम मुख्तलिफ जगहों पर रखे गए खसूसी कार्ड से मालूम हुआ है। पाकिस्तान में डॉक्टर कमाल हुसैन को जिस मकान से अगवा किया गया है वहां से भी कार्ड मिला है जिस पर ग्रीन गार्ड लिखा हुआ है, और एक्रीमिया के जिस स्टोर से फार्मूला उड़ाया गया है वहां से भी कार्ड मिला है जिस पर ग्रीन गार्ड लिखा हुआ है, और अब तुमने पाकिस्तान जाकर डॉक्टर कमाल हुसैन को अगवा करने वालों का सुराग लगाना है और फिर डॉक्टर कमाल हुसैन और क्रॉस ब्रेड का फार्मूला वापस लाना है, चीफ ने एक बार फिर मुसलसल बोलते हुए कहा। चीफ, डॉक्टर कमाल हुसैन जहनी तौर पर तंदुरुस्त होगा तो फार्मूले पर काम करेगा, और ना जाने इससे फार्मूले को मुकम्मल करने में कितना वक्त लग जाएगा। ऐसी सूरत में इन दोनों की वापसी का हमारे या हमारे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा, रैंडल ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ग्रीन गार्ड अहमकों की तंजीम है? वो इस डॉक्टर कमाल हुसैन को चंद दिनों या ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों में ठीक कर लेंगे, और जहां तक फार्मूले की तकमील का ताल्लुक है तो कहा जाता है कि डॉक्टर कमाल हुसैन कामयाबी के बिल्कुल करीब था, جب اس کا ذہنی توازن خراب ہوا۔ اس طرح کسی بھی وقت فارمولہ مکمل ہو سکتا ہے، اور اگر نہ بھی ہوا تب بھی فارمولہ اور ڈاکٹر کمال حسین کو دونوں کو یہاں لا کر ہم اس سے فارمولہ حاصل کرا سکتے ہیں۔ اس طرح پوری دنیا کا مستقبل اور حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ہوائی جہاز میں بیٹھو گے اور گرین گارڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ گے؟ بے شمار ایجنسیاں سر توڑ کوششیں کر چکی ہیں، لیکن آج تک اس معاملے میں معمولی سا کلو بھی نہیں تلاش کر سکی۔ اس میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، اس لیے ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، چیف نے کہا۔ آپ دوست فرما رہے ہیں چیف، رینڈل نے کہا۔ تو چیف نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اپنے سامنے رکھی۔ پھر اسے کھول کر اس میں موجود ایک ہی صفحے کے آخر میں دستخط کر کے اس نے فائل بند کی اور اسے رینڈل کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے تمہیں 6 ماہ کا عرصہ دیا ہے، مجھے ان 6 ماہ کے اندر فارمولا اور ڈاکٹر کمال حسین دونوں چاہیے، یا اگر اس دوران فارمولا مکمل ہو جائے تو پھر صرف فارمولا ہی چاہیے، چیف نے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، رینڈل نے فائل لے کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی ڈکشا بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے چیف کو سلام کیا اور پھر چیف نے میز کے کنارے پر موجود ایک بٹن پریس کیا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا اور وہ دونوں آفس سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے واپس جا رہی تھی۔ تم نے اس مشن کے لیے کوئی ذہنی پلاننگ تو کر لی ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں تم پوری دنیا میں مشہور ہو، رکشا نے کہا۔ تو رینڈل بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، تم درست کہہ رہی ہو، مجھے اس معاملے میں پاکشے کے عمران سے مدد دینی پڑے گی۔ اس دنیا میں وہی ایک ایسا آدمی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے، رینڈل نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے خود فارمولا حاصل کرنے کا پلان بنا لیا تو پھر؟ ڈاکٹر کمال حسین بہرحال پاکشیائی ہے، دکشا نے کہا۔ وہ بے حد اصول پسند ہے، ڈاکٹر کمال حسین نے پاکشیا میں اس فارمولے پر کام نہیں کیا ہے، اس لیے کسی طرح بھی پاکشیا کا فارمولا نہیں بنتا۔ باقی رہی اجناس کی بات، تو اس سلسلے میں اس سے وعدہ کیا جا سکتا ہے کہ اس فارمولے کی ایک کاپی خاموشی سے اسے دے دی جائے گی۔ وہ اس فارمولے کے ذریعے پاکشیا کو اجناس میں ہمیشہ کے لیے خود کفیل بنا سکتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائے گا، رینڈل نے کہا۔ تم اس سے کیا کہو گے کہ وہ تمہیں فارمولا حاصل کر کے دے دے؟ یہ تو ایک ریمیا کی ریڈ زیرو ایجنسی کی توہین ہے، رکشا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو رینڈل بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اور سیکرٹ سروس ایسے معاملات پر کام نہیں کیا کرتی، اس لیے وہ اس فارمولے کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ میں صرف اس سے اتنی درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں یہ معلوم کر دے کہ گرین گارڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، باقی کام ہم خود کر لیں گے، رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے اپنے فلیٹ میں بیٹھے بیٹھے معلوم کر لے گا؟ وہ نجومی تو نہیں ہے، اس لیے جب تک وہ عملی طور پر اس مشن پر کام نہیں کرے گا وہ معلوم ہی نہیں کر سکے گا، دکشا نے کہا۔ وہ جو مرضی آئے کرے، ہمیں گرین گارڈ کا ہیڈ کوارٹر معلوم کر دے، ہمیں فارمولے کی کاپی اسے دے دیں گے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، رینڈل نے کہا۔ لیکن جب تک وہ معلوم نہیں کرے گا ہم کیا کریں گے، رکشا نے کہا۔ ہم بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے، ہمارے پاس بہرحال 6 ماہ ہیں اور یہ کافی وقت ہے، رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو رکشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ سلیمان گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے آج کل عمران اسی مظلوم شوہر کی طرح چھٹیاں منا رہا تھا جس کی جابر بیگم میں کے گئی ہوئی ہو۔ وہ اسے چائے خود بنانی پڑتی تھی، ناشتہ قریب کے ایک ہوٹل سے اس کے فلیٹ پر پہنچایا جاتا تھا، جبکہ لنچ اور ڈنر وہ اپنی مرضی اور پسند کے ہوٹلوں میں کرتا تھا۔ سلیمان اپنے کسی قریبی عزیز کی شادی کے سلسلے میں گاؤں گیا ہوا تھا، اور گاؤں کی روایات کے مطابق شادی کی تقریبات شادی سے ایک ہفتے پہلے ہی شروع ہو جاتی تھی، اور یہ تقریبات شادی سے ایک ہفتے بعد تک جاری رہتی تھی۔ دیہات میں شادی کے فنکشن کو قدیم دور کی طرح آج بھی بڑے بھرپور انداز میں منایا جاتا تھا، جبکہ شہروں میں یہ کام الٹ ہو چکا تھا۔ शहरों में काम की तेज रफ्तारी, बेपनाह मसरूफियत और महंगाई ने मिलकर तकरीबात को सिर्फ रस्मी बना दिया था। लोग रस्मन शिरकत करते थे और शादी से मुताल्लिका लोग भी तकरीब को दिल से मनाने के बजाय रस्मन ही उसे पूरा करते थे। यही वजह थी कि सुलेमान 2 हफ्तों का कहकर गांव गया था और आज उसे गए हुए 2रा दिन था। इमरान फ्लास्क में चाय भरकर सामने रखे हुए था और थोड़ी थोड़ी देर बाद आधी प्याली भर लेता था और फिर चुस्कियां लेकर उसे पीता था और साथ साथ किताबों का मुताला भी जारी रखता था। क्योंकि इन दिनों सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम ना था, इसलिए इमरान के पास फुर्सत ही फुर्सत थी। इमरान किताब के मुताले में डूबा हुआ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बजी, लेकिन इमरान ने उस तरफ तवज्जो ना की। मगर जब घंटी मुसलसल बजती रही तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। दुश्मन मुताला मुसलसल घंटी बजाते आले पर कौन साहब हैं? इमरान ने किताब से नजरें हटाए बगैर ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा। रेंडल बोल रहा हूँ इमरान साहब, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा एक रीमियन था। रेंडल, कमाल है, पहले रेंडरेस तो सुना था कि दुनिया के सर्दतरीन इलाके कुतबैन में पाया जाता था। इसकी खाल का लिबास बनाया जाता था और उसका गोश्त खुश कर लिया जाता था। ये रेंडल क्या है, इसका क्या जदीद एडिशन है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, मैं रेंडल बोल रहा हूँ, एक रीमियन रेड जीरो एजेंसी का रेंडल। मेरे साथ मेरी बीवी और असिस्टेंट दक्षा भी है। हम दोनों अभी पाक एशिया पहुंचे हैं और इस वक्त होटल ब्रिगेंजा से बोल रहे हैं, उसी तरफ से बड़े संजीदा लहजे में कहा गया। तो इमरान रेड जीरो एजेंसी का हवाला सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। रेड जीरो, कमाल है, पहले रेड एरिया हुआ करते थे जहां से शुरफा अपने बच्चों को मना करते थे। बहरहाल मुझे याद आ गया है कि एक चौकोर चेहरे वाला खूबसूरत, मेहनती, जीरक और अकलमंद एजेंट हुआ करता था जिसका नाम रेंडल था और मैं उसे रेंडल की बजाय हैंडल कहा करता था, इमरान ने बाकायदा कमेंट्री करने के अंदाज में कहा। शुक्र है आपको याद तो आया, मैं और दक्षा दोनों आपके फ्लैट पर आ रहे हैं, फिर तफसील से बात होगी, दूसरी तरफ से रेंडल ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे कोई खुशखबरी सुना दी गई हो। अरे अरे, मेरे बावर्ची इन दिनों छुट्टी पर गया हुआ है और मुझे तो पूरी तरह चाय भी बनानी नहीं आती, कभी पत्ती डालना भूल जाता हूँ और कभी पानी डालना। और फिर ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम मेहमान होकर तकलीफ करो, मैं खुद ही तकलीफ कर लेता हूँ और होटल ब्रिगेंजा तुम्हारे पास पहुँच जाता हूँ। बेशक तुम मुझे लंच की ऑफर दे देना, मैं कबूल भी कर लूंगा, आखिर मेहमानों की इज्जत और तकरीम भी तो कोई चीज होती है। इमरान की जबान रवा हो गई। ठीक है इमरान साहब, आप आ जाएं, कमरा नंबर 303 ब्रिगेंजा होटल, उसी तरफ से रेंडल ने हंसते हुए कहा। शुक्र है तुमने 303 कहा है, 302 नहीं कहा, वरना मेरा दिल डूब जाता, इमरान ने कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप, मेरा कमरा नंबर 303 है, 302 नहीं, और ये दिल डूबने वाला क्या सिलसिला है, रेंडल ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हमारे मुल्क की ताजीरात में सेक्शन 302 कत्ल पर इस्तेमाल किया जाता है और उसकी सजा फांसी है, और हमारे मुल्क में कत्ल की केस की इंक्वायरी इस अंदाज में होती है और इस और अदालती कार्रवाई इस कदर तवील होती है कि 302 के मुलजिम, ख्याल रखना मैं मुलजिम कह रहा हूँ, यानी सिर्फ उस पर इल्जाम होता है, मुजरिम नहीं, क्योंकि मुलजिम अदालती फैसले के बाद अगर उस पर जुर्म साबित हो तो वो मुजरिम कहलाता है। बहरहाल 302 का मुलजिम इंसाफ मिलने तक अपनी तमाम जायदाद उस मुकदमे पर लगा चुका होता है, और न सिर्फ इतना मकबूज हो चुका होता है कि अगर बरी हो भी जाए तो बाकी तमाम उम्र कर्ज उतारने में लग जाती है, और अगर सजा याफ्ता हो जाए तो उसकी औलाद अपनी बाकी उम्र कर्ज उतारती रह जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर 302 का सेक्शन किसी हरे भरे दरख्त पर लगा दिया जाए तो वो इस सेक्शन की हैबत की वजह से सूख कर सड़ जाता है। इसलिए कह रहा था कि शुक्र है तुमने 303 नहीं कहा, 302 कहा है, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो रेंडल काफी देर तक बेख्तियार हंसता रहा। कोशिश करो कि मेरे पहुंचने तक किसी तरह हंसते रहो ताकि तुमसे मुलाकात हो तो तुम जब भी हंस रहे हो। हाँ हमारे यहाँ ये शगुन लिए जाते हैं कि अगर कोई काम अहम काम के लिए घर से निकले और कोई हंसता हुआ आदमी उसे दिखाई दे या शादी की बारात आती दिखाई दे तो शगुन अच्छा समझा जाता है कि वो अहम काम कामयाब हो जाएगा। और अगर घर से निकलते हुए कोई गमजदा या रोता पीटता आदमी नजर आ जाए या किसी जनाजे से टकराव हो जाए तो फिर समझो कि शगुन अच्छा नहीं और अहम काम नहीं होगा। इसलिए अगर तुम हंसते हुए मिलोगे तो लंच मिल जाएगा, वरना शक वाला मामला है। बहरहाल मैं आ रहा हूँ, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। और दूसरी तरफ से एक बार फिर हंसने की आवाज सुनकर उसने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। सुलेमान की अदम मौजूदगी की वजह से वो बोरियत महसूस कर रहा था। उसकी कसर उसने रेंडर से बातें करते हुए निकाल ली थी। किताब बंद करके उसने अलमारी में रखी और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार होटल ब्रिगेंजा की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। लेकिन अब वो संजीदगी से सोच रहा था कि एक्रीमिया की टॉप रेडियो एजेंसी का एजेंट रेंडल पाकेशिया क्यों आया है और उसने यहाँ आकर उससे राब्ता क्यों किया। उसे मालूम था कि जब तक एक्रीमियंस को कोई जाती मफाद ना हो तो वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते और अपना वक्त जाया करने के मुतरादिफ समझते हैं। इसलिए रेंडल का पाकेशिया आते ही उसे फोन करना बता रहा था कि उसके पीछे कोई खास मकसद मौजूद है और यही मकसद मालूम करने वो जा रहा था। वैसे वो इन दोनों को फ्लैट पर बुला लेता, लेकिन जाहिर है सुलेमान की अदम मौजूदगी में उनकी खातिर मदारत ना की जा सकती थी और इमरान को ला महाला उन्हें लेकर किसी होटल का रुख करना पड़ता और इसलिए खुद होटल ब्रिगेंजा पहुंचने की बात कर दी थी। फिर थोड़ी देर बाद वो होटल ब्रिगेंजा की पार्किंग में कार रोक कर नीचे उतरा और पार्किंग बॉय से कार्ड लेकर वो होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उस वक्त होटल का वसी और इस हॉल तकरीबन खाली था। इमरान को रेंडल का कमरा नंबर मालूम था, लेकिन फिर भी वो काउंटर की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, आप? काउंटर पर मौजूद नौजवान ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा। ओ, शायद तुम तो मेरे ख्याल में हॉलीडे में थे, इमरान ने कहा। जी हाँ, यहाँ ज्यादा मुआवजे की ऑफर हुई तो मैं यहाँ आ गया। आप आज इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? शाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरा नंबर 303 में एक एक्रीमियन जोड़ा मौजूद है, इसने मुझे फोन करके बुलाया है। लेकिन मुझे पहले तुम मुझे बताओ कि ये जोड़ा कब आया है, हिमदान ने कहा। तो शाहिद काउंटर पर मौजूद कंप्यूटर की तरफ मुड़ा और उसने तेजी से उंगलियां चलाई और फिर सीधा हो गया। 2 घंटे पहले पहुंचे हैं, कमरा विलिंगटन से ही बुक कराया गया है। मर्द का नाम रेंडल है और औरत का नाम दक्षा है, शाहिद ने कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले अल्फाज पढ़ते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि 303 का मतलब तीसरी मंजिल का तीसरा कमरा, क्योंकि होटलों में कमरों के नंबर इसी अंदाज में रखने का रवाज था। चंद लम्हों बाद वो तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 3 के बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे की साइड में नेम प्लेट मौजूद थी और इस पर रेंडल और दक्षा के नाम दर्ज थे। इमरान ने हाथ बढ़ाकर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से रेंडल की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSC DSC ऑक्सन बजाते खुद मौजूद है, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तो कटाक की आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला तो सामने रेंडल मौजूद था। इमरान उसे काफी सालों बाद देख रहा था, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं आया था। आइए आइए इमरान साहब, वेलकम, रेंडल ने मुस्कुराते हुए कहा और एक साइड पर हट गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की लड़की मौजूद थी। ये मेरी बीवी और असिस्टेंट दक्षा है, और दक्षा ये है वो आलमी शोहरत याफ्ता इमरान साहब, रेंडल ने बाकायदा दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। बीवी और असिस्टेंट दो मुतजाद लफ्ज हैं। बीवी और बॉस कहा करो, इमरान ने कहा तो रेंडल और दक्षा दोनों हंस पड़े। फिर रस्मी जुमले बोलने के बाद वो सिटिंग रूम में मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए इमरान के कहने पर रेंडल ने अपने और दक्षा के लिए शराब और इमरान के लिए एप्पल जूस मंगवा लिया। इमरान साहब, आप पर जमाने का कोई असर नहीं पड़ता, आप वैसे ही हैं जैसे कई साल पहले मैंने आपको देखा था, रेंडल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो कमा रहा हूँ, इसलिए मुझ पर जमाने का क्या असर होगा। मुझे तो तुम पर हैरत है कि दक्षा जैसी हसीना आलम और खूबसूरत लड़की के शौहर होने के बावजूद तुम वैसे के वैसे हो, वरना तुम्हें तो ज्यादा जवान नजर आना चाहिए, इमरान ने कहा। मुझे हसीना आलम कहने का बेहद शुक्रिया इमरान साहब, दक्षा ने बड़े मुसर्रत भरे लहजे में कहा। अरे अरे इमरान साहब प्लीज, मैं दक्षा को साथ वापस ले जाना चाहता हूँ, और अगर आपने इसी तरह इसकी तारीफें शुरू कर दी तो इसमें वापस जाने से इनकार ही कर देना है, रेंडल ने कहा। तो इसकी खूबसूरत बात पर इमरान भी बेअख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ा, दक्षा भी हंस पड़ी। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई तो रेंडल उठ कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो वेटर ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में एक एप्पल जूस का टिन रखा हुआ था, जबकि दो शराब से भरे जाम थे। वेटर ने शराब से भरे दोनों जाम और जूस का टिन मेज पर रखा और फिर खाली ट्रे उठाए वापस चला गया। तो रेंडल ने दरवाजा बंद किया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, मैं आपके लिए खसूसी ऑफर लेकर आया हूँ और मुझे आपसे खसूसी मदद भी चाहिए, रेंडल ने कुर्सी पर बैठकर शराब का गिलास उठाते हुए कहा। खुलकर बात करो रेंडल, तुम मेरे दोस्त रहे हो और मेरे मुल्क के खिलाफ अगर कोई काम ना हुआ तो मैं खुलकर तुम्हारी मदद करूंगा, इमरान ने एप्पल जूस का टिन उठाते हुए कहा, जबकि दूसरा शराब का गिलास दक्षा ने उठा लिया, लेकिन वो बातचीत में कोई हिस्सा नहीं ले रही थी। फिर रेंडल ने शराब का घूंट लेकर ग्लास मेज पर रखा और अपने चीफ की बताई हुई तमाम तफसील उसने लफ्ज ब लफ्ज दोहरा दी। रेंडल मुसलसल बोल रहा था, इसलिए इमरान खामोश रहा। अलबत्ता उसके चेहरे पर संजीदगी के तासुरात थे। अगर ऐसा हुआ है जैसे तुम बता रहे हो रेंडल, तो ये दुनिया पर हुकूमत करने का सबसे कामयाब हथियार है। आज से कई साल पहले मुझे मालूम हुआ था कि मैं भी शोग्रान में भी ऐसे ही तजुर्बात हो रहे हैं कि चावलों की ऐसी क्रॉस ब्रेड पैदा की जाए जो मनों बल्कि टनों के हिसाब से पैदावार दे, लेकिन बाद में इत्तला मिली कि साइंसदान मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, हत्ता कि इसे वक्त का जिया समझकर मंसूबा ही तर्क कर दिया गया। जबकि तुम कह रहे हो कि डॉक्टर कमाल हुसैन कामयाबी के करीब पहुंच गया था जब उसका जहनी तवाजुन खराब हो गया, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हाँ, इसीलिए तो ग्रीन गार्ड ने डॉक्टर कमाल हुसैन को भी यहाँ से अगवा किया और फॉर्मूला एक रीमिया ले उड़ा, रेंडल ने कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। मुझे जाती तौर पर इस बात पर यकीन है कि आप अपनी जहानत, मेहनत और वसी ताल्लुकात की बिना पर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। सुपर पावर्स की तमाम एजेंसियां ग्रीन गार्ड के हेडक्वार्टर और उसके कर्ता धरता अफराद के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकी, और मुझे भी शायद कामयाबी ना हो, या अगर हो तो इतनी देर हो जाए कि फिर उस कामयाबी का कोई फायदा ही ना हो। इसलिए अगर आप डॉक्टर कमाल हुसैन को बरामद करें और ग्रीन गार्ड का हेडक्वार्टर ट्रेस करने पर काम शुरू कर दें तो मुझे यकीन है कि आप इस नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे। अब रही ये बात कि आपके मुल्क को इससे क्या फायदा होगा, तो वैसे तो ये फॉर्मूला इक्रीमिया की ही मिल्कियत है, डॉक्टर कमाल हुसैन ने इस पर वही काम किया, लेकिन मैं इस फॉर्मूले की एक कॉपी आपको देने का वादा करता हूँ ताकि आपका मुल्क भी इसी कामयाबी से फायदा उठाए और किसी के जेरे नगर ना रहे, रेंडल ने जवाब देते हुए कहा। इस सारे मामले में दो कबाहतें हैं, एक तो ये कि अभी ये तय नहीं हुआ कि क्या ग्रीन गार्ड के डॉक्टर साइंसदान कमाल हुसैन के जहन का इस अंदाज में इलाज कर लेंगे कि वह दोबारा इस फॉर्मूले पर काम करने के लायक हो जाए। दूसरा ये कि अगर वो काम शुरू भी कर दे तो कब तक कामयाब होगा, फिर उसे वसी पैमाने पर इस कदर वसी बुनियाद पर कि पूरी दुनिया को खुराक सप्लाई की जा सके कब तक हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि मैं मालूम करके तुम्हें बताता हूँ, तुम वहां पहुंच जाते हो लेकिन अभी डॉक्टर कमाल हुसैन जहनी तौर पर ठीक ना हुआ हो, तो तुम क्या करोगे, और अगर वो कामयाब ना हुआ तो फिर तुम क्या करोगे? इन सारी कबाहतों का हल क्या है? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मैंने चीफ से बात की थी लेकिन उन्होंने कहा है कि ग्रीन गार्ड को जब तक ये यकीन ना हो जाए कि इसके डॉक्टर वाकई डॉक्टर कमाल हुसैन को ठीक कर सकते हैं, उस वक्त तक वो डॉक्टर कमाल हुसैन को इस फार्मूले समेत अगवा नहीं कर सकते। उनकी ये कार्रवाई बता रही है कि उन्हें जल्द अज जल्द अपनी कामयाबी पर यकीन है, टंडल ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, ये जवाब वाकई दिल को लगता है, लेकिन अब दूसरी बात कि मैं तुम्हें ट्रेस करके देता हूँ कि डॉक्टर कमाल हुसैन को कहाँ रखा गया है या वो कहाँ इस फॉर्मूले पर फाइनल काम कर रहा है, और तुम वहाँ पहुँचने में नाकाम रहे हो या वहाँ पहुँच कर फार्मूला हासिल करने में नाकाम रहे तो फिर, इमरान ने कहा तो रेंडल ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। आप ये बात कह सकते हैं इमरान साहब, लेकिन मुझे अपनी जात पर डक्षा पर यकीन है कि हम कामयाब रहेंगे, रेंडल ने जवाब दिया। गुड, तुम्हारा ये एतमाद मुझे काफी पसंद आया। गुड शो, अब समझो कि तुम आधे कामयाब हो चुके हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, रेंडल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें इस सारे मिशन के लिए 6 माह दिए गए हैं, अब अगर तुम मुझे तलाश करने में 2 माह लग जाते हैं तो इस दौरान तुम कहाँ रहोगे, यहाँ पाकेशिया में या वापस चले जाओगे, इमरान ने कहा। मैं अपने तौर पर यहाँ रहकर कोशिश करूंगा, हम मिशन पर हैं इसलिए बहरहाल कोशिश करते रहेंगे, अगर हमें आगे बढ़ने का कोई क्लू मिला तो हम इस क्लू पर आगे बढ़ जाएंगे और अगर ना मिला तो कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हमने हर सूरत में ये मिशन मुकम्मल करना है, ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, रेंडल ने जवाब देते हुए कहा। गुड, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, इसके बाद क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, फिलहाल तो डॉक्टर कमाल हुसैन का सुराग लगाना है और ग्रीन गार्ड के हेडक्वार्टर को ट्रेस करना है, इमरान ने कहा। ओके, अब मैं मुतमईन हूँ, मुझे यकीन है कि जिस क्लू पर कि कई रोज बाद पहुंचेंगे, आप इस पर चंद घंटों में पहुंच जाएंगे, ये भी आपका एजाज है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप जल्द ही मामलात को फाइनल कर देंगे, रेंडल ने कहा। इस हुस्ने जन का बेहद शुक्रिया, लेकिन मुकाबला ग्रीन गार्ड से है जिसके बारे में तुम बता रहे हो कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए ये सब कुछ कर रही है और अभी तक इस हद तक खुफिया है कि किसी को इसके बारे में मालूम नहीं, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठें, लंच हमारे साथ करके जाएं, रेंडल ने भी उठते हुए कहा। मैं तो लंच नहीं करता, ब्रंच करता हूँ और वो मैंने कर लिया है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ब्रंच, वो क्या होता है, रेंडल ने हैरत भरे लहजे में कहा। ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर ब्रंच कहा जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों की तरफ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेंडल और दक्षा दोनों इसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़े, जबकि इमरान दरवाजा खोलकर बाहर आ गया और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल की तरफ बड़ी चली जा रही थी। जो कुछ रेंडल ने उसे बताया था उसने उसे चौंका दिया था। उसे मालूम था कि दुनिया की आबादी के तेजी से फैलाव, जरई रकबा जात का मुसलसल कम होना और माहौल की तब्दीली की वजह से जरई पैदावार कम होती जा रही है और आइंदा सदियों में दुनिया पर हुकूमत वही मुल्क कर सकता है जो वाफिर अजनास पैदा कर सकता हो, इसलिए यह खास अहम और संजीदा मामला था और इमरान ने इस पर संजीदगी से काम करने का फैसला कर लिया था। ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में एक बड़े साइज की मेज के पीछे ऊंची पुश्त वाली रिवॉल्विंग चेयर पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। ये आदमी यूरोपी निजात था, इसने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था, आंखों पर नजर का चश्मा था जिसका फ्रेम सिया रंग का था। उसके सामने एक फाइल मौजूद थी जिस पर उसकी नजरें जमी हुई थी कि उसके दाएं हाथ पर पड़े हुए सुर्ख रंग के फोन की घंटी बजी तो इस आदमी ने चौंककर फोन की तरफ देखा और फिर एक तवील सांस लेकर उसने रिसीवर उठाया। यस, हार्वर्ड बोल रहा हूँ, अधेड़ उम्र ने रिसीवर कान से लगाते हुए सर्द लहजे में कहा। एशिया डेस्क से रॉबर्ट बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। तो हॉवर्ड चौंक पड़ा। कोई खास बात? हॉवर्ड ने चौंक कर कहा, मुझे इत्तला मिली है जनाब कि एक्रीमिया की रेड जीरो एजेंसी का एजेंट रेंडल अपनी असिस्टेंट के साथ पाक एशिया पहुंचा है और डॉक्टर कमाल हुसैन के अगवा पर काम कर रहा है और उसकी मुलाकात पाक एशिया के सबसे खतरनाक एजेंट इमरान से हुई है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो हॉवर्ड बेख्तियार उछल पड़ा। वो इमरान के नाम पर चौंका था। तफसीलात बताओ, हॉवर्ड ने तेज लहजे में कहा। तफसील के मुताबिक रैंडल और इमरान पुराने दोस्त हैं। रैंडल ने इमरान के जिम्मे लगाया है कि वो मालूम करके उसे बताए कि डॉक्टर कमाल हुसैन को पाक एशिया से अगवा करके कहाँ ले जाया गया है और ग्रीन गार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, और इमरान ने उससे वादा कर लिया है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। कैसे ये तफसील मालूम हुई तुम्हें? हॉवर्ड ने पूछा। हमारे आदमियों ने जदीद तरीन आलात की मदद से इनके दरमियान कमरे में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, रॉबर्ट ने कहा। तुम्हारे आदमी को इस रेंडल के बारे में कैसे मालूम हुआ? हॉवर्ड ने पूछा। पाकेशिया में जिस ग्रुप ने डॉक्टर कमाल हुसैन के अगवा में मदद की थी, उस ग्रुप का इंचार्ज एक्रीमियन निजाद है। इसका नाम रोनाल्ड है। वो मुस्तकिल पाकेशिया का बाशिंदा है। इससे पहले वो एक्रीमियन एजेंसी में काम करता रहा है और वो रेंडल को अच्छी तरह पहचानता है। उसने रेंडल को होटल में देखा तो वो चौंक पड़ा और फिर इसकी निगरानी शुरू कर दी। फिर इमरान वहां पहुंचा तो वो मजीद चौंक पड़ा और उसके बाद उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगु ने ये सब कुछ मालूम कर लिया, रॉबर्ट ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। क्या रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास मौजूद है? हॉवर्ड ने कहा। यस सर, मुझे फोन पर इस रिकॉर्डिंग की टेप कराई गई है, रॉबर्ट ने जवाब दिया। तुम भी ये रिकॉर्डिंग मुझे टेप करा दो, हॉवर्ड ने कहा। फिर फोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। यस, सुनाओ रिकॉर्डिंग, हॉवर्ड ने कहा। तो दूसरी तरफ से बातचीत शुरू हो गई। हॉवर्ड खामोश बैठा सुनता रहा। उसे मालूम था कि तमाम बातचीत फोन के अंदर मौजूद खुसूसी टेप रिकॉर्डर में टेप हो रही है। गुफ्तगू पूरी तफसील से टेप की गई थी। आपने सुन ली रिकॉर्डिंग जनाब? रॉबर्ट ने कहा। हाँ, तुम्हारे आदमी ने वाकई इंतहाई काम की बात मालूम की है। वेरी गुड, इसे फौरी बड़ा इनाम दे दो, ऐसे आदमियों की कदर होनी चाहिए, हॉवर्ड ने कहा। यस सर, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? रॉबर्ट ने कहा। मैं सुपर चीफ को रिपोर्ट दूंगा, फिर जो हिदायत वो देंगे उस पर अमल होगा, हॉवर्ड ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और हॉवर्ड ने रिसीवर रख दिया और फिर कुर्सी से उठकर साइड में मौजूद अलमारी खोलकर उसने एक सिया रंग का मखसूस साख्ता फोन निकाला और उसकी लीड उसने सुर्ख रंग के फोन के साथ मुंसलिक कर दी। इसके बाद इसने सिया रंग के फोन पर मौजूद नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस एच क्यू, एक मशीनी आवाज सुनाई दी। नंबर 3 हॉवर्ड बोल रहा हूँ, सुपर चीफ को एक इंतहाई अहम रिपोर्ट देनी है, हॉवर्ड ने कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही खामोशी तारी हो गई। हॉवर्ड को मालूम था कि अब उसके बारे में तहकीकात होंगी और जब हेडक्वार्टर को इत्मीनान होगा तो फिर उससे राब्ता किया जाएगा। क्योंकि ये सारा काम सैटेलाइट के जरिए होता था इसलिए इसमें चंद सेकंड ही लगते थे, और यही हुआ। एक डेढ़ मिनट बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। सुपर चीफ फ्रॉम दिस एंड, बोलने वाले के लहजे में करख्तीगी का तासुर नुमाया था। सर, एशिया डेस्क से एक अहम रिपोर्ट मिली है कि डॉक्टर कमाल हुसैन के पाकिस्तान से अगवा और एक्रीमिया से क्रॉस ब्रेड का फार्मूला उठाए जाने पर एक्रीमिया के रेड जीरो एजेंसी ने काम शुरू कर दिया है और उसका एक एजेंट रेंडल और उसकी बीवी दक्षा दोनों पाकिस्तान पहुंच गए हैं, और फिर रेंडल ने इमरान को फोन करके अपने पास बुलाया और इससे मदद की दरख्वास्त की है, हॉवर्ड ने जवाब देते हुए कहा। क्या तफसीलात हासिल की गई हैं इस मुलाकात की? सुपर चीफ ने कहा। यस सर, इन दोनों के दरमियान होने वाली तमाम बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई है और मुझ तक पहुंच भी गई है। अगर आप हुक्म दें तो पूरी रिकॉर्डिंग में आपको मुंतकिल कर दूं, हॉवर्ड ने कहा। हाँ कर दो, सुपर चीफ ने कहा। तो हॉवर्ड ने सिया रंग के फोन के दो बटन प्रेस करने के बाद सुर्ख रंग के फोन के दो बटन प्रेस कर दिए। इसे मालूम था कि टेप चल पड़ा होगा। और दूसरी तरफ मौजूद सुपर चीफ ना सिर्फ ये गुफ्तगू सुन रहा होगा बल्कि वहां मौजूद टेप में भी ये टेप हो रहा होगा। फिर हल्की सी कटाक की आवाज सुनाई दी तो हॉवर्ड ने सिया फोन का एक बटन प्रेस कर दिया। सुपर चीफ, आपने इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली है, अब क्या हुक्म है? हॉवर्ड ने कहा। रैंडल, दक्षा और इमरान, इन तीनों का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन ऐसा ग्रुप इस्तेमाल किया जाए जिसका कोई ताल्लुक हमसे ना हो, सुपर चीफ ने कहा। यह सुपर चीफ, हुक्म की तामील होगी, हॉवर्ड ने कहा। तो दूसरी तरफ से कटाक की आवाज सुनाई दी और हॉवर्ड समझ गया कि रब्ता खत्म हो गया। उसने फोन ऑफ किया और उसकी लीड सुर्ख रंग के फोन से अलहदा की और फिर उठकर उसने सियाह रंग के फोन को वापस अलमारी में रखा और अलमारी बंद करके दोबारा कुर्सी पर बैठकर उसने सुर्ख रंग के फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रब्ता होते ही रॉबर्ट की आवाज सुनाई दी। हॉवर्ड बोल रहा हूँ, हॉवर्ड ने कहा। यस चीफ, हुक्म दें, उसी तरफ से कहा गया। सुपर चीफ ने हुक्म दिया है कि रैंडल, उसकी बीवी रक्षा और इमरान तीनों को किसी ऐसे ग्रुप के जरिए हलाक करा दिया जाए जिसका कोई ताल्लुक हमसे और खास तौर पर तुमसे ना हो, हॉवर्ड ने जवाब देते हुए कहा। सॉरी चीफ, रैंडल और उसकी बीवी की हद तक तो ये काम हो सकता है, लेकिन इमरान के खिलाफ कोई ग्रुप ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो लोग इमरान को माफोकुल फितरत समझते हैं और उनका ये कहना है कि अब तक हजारों बार बड़े से बड़े ग्रुपों ने इमरान को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इमरान ना सिर्फ बच निकलता है बल्कि इस ग्रुप को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। और चीफ, रैंडल को भी खत्म करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हालात इमरान तक पहुंच चुके हैं और वो और ज्यादा इस मामले पर संजीदा हो जाएगा, रॉबर्ट ने कहा। लेकिन सुपर चीफ का हुक्म है और तुम्हें मालूम है कि उनके हुक्म की हर सूरत में तामील होगी। तुम ऐसा करो कि रैंडल और उसकी बीवी पर काम करो, इमरान के लिए मैं कुछ और सोचता हूँ, हॉवर्ड ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है चीफ, आपके ताल्लुकात बेहद वसी हैं, आप तो वहां से भी गुरु भिजवा सकते हैं, रॉबर्ट ने कहा। मुझे रिपोर्ट देते रहना क्योंकि सुपर चीफ ने साथ साथ रिपोर्ट देने का भी हुक्म दिया है, हॉवर्ड ने कहा। यस चीफ, हुक्म की तामील होगी, रॉबर्ट ने जवाब दिया तो हॉवर्ड ने रिसीवर रख दिया। रॉबर्ट, बात तो ठीक कर रहा है लेकिन अब क्या किया जाए, सुपर चीफ के अहकाम की तामील भी तो करनी है, लेकिन लगता है कि रॉबर्ट इस मामले पर कोई ना कोई गेम खेलेगा। इसका अंदाज बता रहा है कि वो इमरान के खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा नहीं। मुझे खुद इस सिलसिले में काम करना पड़ेगा, हॉवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मेज पर रखे हुए सफेद रंग के फोन का रिसीवर उठाकर उसने उस पर मौजूद बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, ग्राहम बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हॉवर्ड बोल रहा हूँ, ग्राहम लॉस डेगो से, हॉवर्ड ने कहा। ओह, तुम आज बड़े दिनों बाद याद किया, दूसरी तरफ से ग्राहम ने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। बस बिजनेस ही ऐसा है कि हर वक्त मसरूफ रहना पड़ता है, हॉवर्ड ने कहा तो दूसरी तरफ से ग्राहम बेख्तियार हंस पड़ा। किस बिजनेस की बात कर रहे हो, जाहरी या असली, ग्राहम ने कहा। अरे तुम हर बार यही बात कर देते हो, तुम्हें तो पता है कि मेरा स्पेयर पार्ट का बैनुल अक्वामी बिजनेस है, लेकिन तुम हर बार असली और जाहरी का चक्कर चला देते हो, हॉवर्ड ने कहा। मेरा ताल्लुक एजेंसी से है इसलिए मुझे मालूम है कि तुम्हारा जाहरी बिजनेस तो वाकई बैनुल अक्वामी सतह पर स्पेयर पार्ट का है, लेकिन असली बिजनेस के बारे में तो भी मुझे रिपोर्ट मिलती रहती है। हसास नोयत के असलहे की स्मगलिंग के बैनुल अक्वामी रैकेट का एक हिस्सा तुम भी हो, ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुमसे वाकई कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, अब क्या किया जाए, हॉवर्ड के लहजे में गहरा इत्मीनान नुमाया था। उसे खतरा था कि कहीं ग्राहम इसकी ग्रीन गार्ड से वाबस्तगी के बारे में ना जानता हो, लेकिन ग्राहम को सिर्फ असलहे की स्मगलिंग की हद तक ही मालूम था इसलिए उसके लहजे में इत्मीनान उभर आया था। अब ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती ग्राहम, मोहतात रहा करो, हॉवर्ड ने कहा। ओके, बहरहाल अब तुम बताओ कि कैसे फोन किया, ग्राहम ने कहा। पाकेशिया के किसी अली इमरान नामी एजेंट को जानते हो? हावर्ड ने कहा। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक पैदा हो गया? ग्राहम ने पूछा। वो हमारे एक बिजनेस के आड़े आ रहा है, इसलिए हम उसे फिनिश कराना चाहते हैं। वो तुम्हारी नजर में कोई ग्रुप है जो यकीनी तौर पर यह काम कर गुजरे? मुआवजा मुंह मांगा दिया जाएगा, हावर्ड ने कहा। वैसे तो शायद ही कोई ग्रुप इमरान के खिलाफ काम करने पर राजी हो, क्योंकि आज तक हजारों नहीं सैकड़ों बार इस पर कातलाना हमले किए गए हैं, लेकिन हर हमले में वो ना जाने किस तरह बच निकलने में कामयाब हो जाता है। और ना सिर्फ बच निकलता है बल्कि हमलावर ग्रुप को भी फिनिश कर दिया जाता है, इसलिए कोई भी इमरान के फासले पर किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होता। अलबत्ता एक ग्रुप भी हाल ही में एक रीमिया से वहां गया हुआ है। उसके सरगना का नाम ब्राइड है। वो खासा फाल तेज और ठीक काम करने वाला ग्रुप है, लेकिन वो मुआवजा अपनी मर्जी का मांगेगा, ग्राहम ने जवाब देते हुए कहा। मुआवजे का कोई मसला नहीं, काम हतमी और यकीनी होना चाहिए, हावर्ड ने कहा। मैं तुम्हें इसका नंबर दे देता हूँ, तुम इससे बात कर लो, ग्राहम ने कहा। ऐसे काम अजनबी कॉलों पर नहीं किए जाते, इतनी बात तो तुम भी जानते हो। तुम उसे फोन करो और अगर वो आमादा हो जाए तो मुआवजा भी खुद ही तय कर लो। और सुनो, जो मुआवजा तुम करोगे वो मुझे मंजूर होगा और मजीद 10% तुम्हारा वक्त देने का होगा, हॉवर्ड ने कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ फिर तुम्हें कॉल करता हूँ, ग्राहम ने कहा, और उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो हॉवर्ड ने रिसीवर रख दिया। अब अगर ब्राइड नाकाम भी हो जाता है तो बात ग्राहम तक ही पहुंचेगी, मुझ तक नहीं पहुंचेगी, हावर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बजी तो हावर्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, हावर्ड बोल रहा हूँ, हावर्ड ने कहा। ग्राहम फ्रॉम दिस एंड, उसी तरफ से ग्राहम की आवाज सुनाई दी। कोई अहम बात, हावर्ड ने कहा। हाँ, ब्राइड से मेरी बात हुई है। पहले तो उसने इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान में वो भी इमरान के बारे में सुन चुका है, लेकिन मेरे इसरार पर कि एक आदमी पर अचानक फायर खोल देने से वो कैसे बच सकता है। और मैंने ब्राइट से ये भी कहा कि वो और इसका ग्रुप तो इस मामले में बेहद मारूफ है, तो वो मेरे इसरार पर मान गया है। मैंने उससे कहा कि नतीजे हतमी और यकीनी होने चाहिए, तो इसने कहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसने इस काम की तकमील के लिए 1 हफ्ता मांगा है ताकि वो हतमी नतीजे दे सके, और मुआवजा $1,00,000 और वो भी पूरा पेश की, ग्राहम ने तफसील बताते हुए कहा। थैंक यू ग्राहम, तुमने वाकई मेरे लिए काम किया है, ये तुम्हारा मुझ पर एहसान है। मैं अभी तुम्हें $1,00,010 भिजवा देता हूँ, तुम अपने बैंक अकाउंट के बारे में तफसील बता दो, हॉवर्ड ने कहा। तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई जो हॉवर्ड ने साइट पर रखे हुए पैड पर नोट कर ली। ओके, रकम अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और मैं तुम्हारी तरफ से मुस्बित रिपोर्ट का मुंतजर रहूंगा, हॉवर्ड ने कहा। बेफिक्र रहो, नतीज हतमी होंगे, ग्राहम ने जवाब दिया। तो हॉवर्ड ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और प्रिंटर कॉम का रिसीवर उठाकर इसने अपने सेक्रेटरी को ग्राहम के बैंक अकाउंट की तफसील बताई और उसे कहा कि $1,10,000 ट्रांसफर कर दो, और रिसीवर रख दिया। अब इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे। रैंडल और दक्षा दोनों कार में सवार कहकशा कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। कहकशा कॉलोनी दारुल हुकूमत के मुजाफात में थी और कहा जाता था कि ये कॉलोनी दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी कॉलोनी थी और सबसे पहली भी थी, और शायद यही वजह थी कि इस कॉलोनी की तमाम छोटी बड़ी कोठियों का तर्ज तामीर खासा पुराना था। कार रैंडल ने होटल से हायर की, साथ ही मुकामी ड्राइवर भी था, जबकि रैंडल और दक्षा दोनों अपनी सीट पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कार एक मोड़ मुड़कर कहकशा कॉलोनी में दाखिल हो गई। सर, किस कोठी पर जाना है आपने, ड्राइवर ने कहा, तो रफ्तार आहिस्ता करते हुए रैंडल से पूछा। 260, रैंडल ने जवाब दिया, तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 3 सड़कों पर घूमने के बाद कार एक पुराने तर्ज की बनी हुई कोठी के फाटक के सामने रुक गई। गेट की साइड में सुतून पर डॉक्टर कमाल हुसैन की पुरानी सी नेम प्लेट मौजूद थी, जिसके हरूफ भी उड़े हुए थे। कोठी पर भी वीरानी छाई हुई थी। कैंडल नीचे उतरा और उसने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस किया। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक खासी उम्र का बूढ़ा आदमी, जिसने सादा सा लिबास पहना हुआ था और पैरों में चप्पल थी, बाहर आ गया। जी साहब, आपने किससे मिलना है? बूढ़े ने रेंडल को गौर से देखते हुए कहा। डॉक्टर कमाल हुसैन से, रेंडल ने कहा। जनाब, उन्हें तो अगवा कर लिया गया है और अभी तक वो बरामद नहीं हो सके। पुलिस कोशिश कर रही है, बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा। ये तो हमें भी बताया गया है, लेकिन क्या कोठी में उनका कोई अजीज है? रेंडल ने कहा। नहीं जनाब, डॉक्टर कमाल हुसैन यहाँ अकेले रहते थे। इनका एक ही बेटा है जो मुस्तकिल तौर पर एक रिंगिया में रहता है, और वो 6-7 सालों से यहाँ नहीं आया। मैं डॉक्टर साहब की जवानी के दौर से उनके साथ रहता चला आ रहा हूँ। मेरा नाम इमाम दीन है, मैं उनका चौकीदार भी हूँ और उनका मुलाजिम भी। मुझे अलबत्ता बाकायदगी से बड़ी माकूल तनख्वाह मिलती रहती है, चौकीदार इमाम दीन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। या तो बुढ़ापे की वजह से उसकी कोई सुनता ना था, या फिर अकेले रहने की वजह से वो मुसलसल बोलने के लिए तरस गया था। चुनाचा मौका मिलते ही वो पूरी रफ्तार से मुसलसल बोलता चला गया। क्या हम अंदर बैठकर आपसे बात कर सकते हैं? रैंडल ने कहा। जरूर जनाब, लेकिन मैं आपकी ज्यादा खिदमत ना कर सकूंगा, इमाम दीन ने कहा। कोई बात नहीं मोहतरम, हम सिर्फ डॉक्टर कमाल हुसैन के बारे में बात करेंगे, रैंडल ने कहा। मैं फाटक खोलता हूँ, आप कार अंदर ले आए, इमाम दीन ने कहा और तेजी से वापस छोटे फाटक के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बड़ा फाटक खुला और रैंडल के कहने पर ड्राइवर कार अंदर ले गया। कोठी पर वाकई वहशतनाक वीरानी और खामोशी तारी थी। चौकीदार इमाम दीन ने फाटक बंद किया और फिर वो रेंडल और डक्षा दोनों को ड्राइंग रूम में ले गया, जबकि ड्राइवर वही कार के अंदर मौजूद था। मैं आपके लिए चाय बना लाऊं, इमाम दीन ने कहा। नहीं, यहाँ बैठो हमारे पास, हमने 2-4 बातें करनी है। चाय का शुक्रिया, रेंडल ने इमाम दीन से कहा। हुकुम सरकार, फरमाइए, इमाम दीन ने उनके नजदीक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। डॉक्टर कमाल हुसैन साहब की कोई तस्वीर है आपके पास? कोई ताजा तस्वीर? रेंडल ने कहा। जी, अखबार में शाया हुई थी, तस्वीर मैंने अखबार संभाल कर रखा हुआ है। जब डॉक्टर साहब बड़े तवील अरसे बाद वापस आए तो अखबार वालों ने यहाँ आकर उनकी तस्वीर बनाई थी, वही तस्वीर है, लेकिन और कोई तस्वीर नहीं है, चौकीदार तो ने जवाब देते हुए कहा। वही तस्वीर दिखा दें, रेंडल ने कहा। आपने क्या करना है जनाब तस्वीर का? इमामदीन ने कहा। जहाँ डॉक्टर साहब काम करते हैं, हमारा ताल्लुक वहां से है, हमने जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट देनी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, रेंडल ने जवाब दिया। ठीक है जनाब, मैं ले आता हूँ, इमामदीन ने उठते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मेरा ख्याल में हम अंधेरे में टामक टूरियां मार रहे हैं, बख्शा ने बेजार से लहजे में कहा। कहीं ना कहीं से तो आगाज करना ही था, रेंडल ने जवाब देते हुए कहा। प्रोडक्शन ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इमाम दीन एक अखबार पकड़े हुए अंदर दाखिल हुआ। उसने अखबार रेंडल की तरफ बढ़ाया। ये लीजिए साहब, इमाम दीन ने कहा। तो रेंडल ने इस बात में सर हिलाते हुए अखबार उसके हाथ से ले लिया। एक सिंगल कॉलम तस्वीर अखबार में मौजूद थी। यही डॉक्टर कमाल हुसैन साहब हैं, रेंडल ने तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा। जी हाँ साहब, यही डॉक्टर साहब हैं, इमाम दीन ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं ये अखबार साथ ले जा सकता हूँ? रेंडल ने अखबार को तह करते हुए कहा। ले जाए साहब, इमाम दीन ने जवाब दिया। तो रेंडल ने उसका शुक्रिया अदा किया और अखबार को तह करके उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। डॉक्टर कमाल हुसैन को कब और कैसे अगवा किया गया, क्या आप तफसील से बताएंगे? रेंडल ने पूछा। साहब, 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं डॉक्टर साहब के खाने के लिए सामान खरीदने यहाँ से करीबी मार्केट गया। डॉक्टर साहब अपने कमरे में थे, मैं जब वापस आया तो मैंने फाटक में से सिया रंग की एक कार को निकल कर दाई तरफ मुड़ते हुए देखा। मैं हैरान रह गया क्योंकि फाटक वैसे ही खुला हुआ था। मैं दौड़ कर करीब आया और फिर मैंने अंदर जाकर देखा तो डॉक्टर साहब मौजूद ना थे। उनकी चप्पल भी वैसे ही कुर्सी के नीचे पड़ी थी और कमरे में वैसे आसार वाजे तौर पर नजर आ रहे थे जिससे मालूम होता था कि डॉक्टर साहब को जबरदस्ती ले जाया गया है। मैंने करीबी थाने फोन करके उनको इत्तला दी तो पुलिस यहाँ पहुंच गई। उन्होंने सारी चेकिंग की और फिर मेरा बयान लेकर वो चले गए। इसके बाद अब तक डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं, इमाम दीन ने तफसील बताते हुए कहा।